Govinde, 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 लोकेश पर स्मृत एकांत भक्ति गोविंदे सर्वत्र तदक्षणावाने लोकेश एकांत भक्ति गोविंदे सर्वत्र तदीक्षणावाने लोकेस्में स्वार्था परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे सर्वत्र तदीक्षणावाने भक्ति अनन्य भक्ति गोविंदे गोविंद के प्रति यत जो सर्वत्र सभी जगह प्रतीक्षणा गोविंद या कृष्ण के साथ संबंध को देखना अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्र ने बतलाया है मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। तात्पर्य इस श्लोक में आगत सर्वत्र तदीक्षणम शब्द भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के कार्यकलापों में संबंध दिखाती है। अत्यंत उच्च भक्त महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबद्ध नहीं देखते। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हो निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है लेकिन वह उनके वास्तविक रूपों को नहीं देखता। प्रत्युत वह जहाँ कहीं भी देखता वही उसे परमेश्वर का रूप प्रकट होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8:274। यहाँ तक कि इस जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता, इसके बदले में वह हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है तो वह उन्हें गोविंद रूप में देखता है। गोविंदम आदि पुरुषम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राजेंद्र गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाला कृष्ण परम नियंता है, सच्चिदानंद रूप है, वे सदैव के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता एक पूर्ण भक्ति की परीक्षा यही है कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है, यहाँ तक कि एक परमाणु में भी, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। भक्ति यही पूर्ण दृष्टि है, इसीलिए कहा गया है नारायणम अयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिनः जगत धनमयम लुभ्वा कामुका कामिनीमयम। भक्त हरेक को नारायण रूप में देखता है, नारायण मयम, प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होता है, और जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती है, उसी तरह परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंभे के भीतर भी नारायण को देखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है वह दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण को परित्याग भक्ति की दृष्टि नहीं होती, प्रत्युत यह भौतिकवादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्रीमद भागवत के सप्तम संस्कंद के अंतर्गत प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा शीर्षक सातवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम जनाशलाकया तस्म श्री गुरव नम श्री चैतन्यमोस्थित भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं दधा स्वापदाक वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमल श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथांशिकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणालिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी अष्टाध्यादेशकारिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एतावानि विलोक्यस्मिन् पुंसा स्वार्था परस्मृता एकांत भक्तिर्गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से चर्चा कर रहे हैं, उनके सखा जो मित्रगण है स्कूल के, वे स्पष्ट रूप से देख रहे कि प्रहलाद महाराज जी की जो उनका जो गुण है उनकी कार्यकलाप बाकी विद्यार्थियों से अलग है। अगर ऐसे स्कूल में कोई अलग बन जाता है तो निश्चित है उसके ऊपर सबकी दृष्टि पड़ती है और स्वाभाविक सबका दृष्टि प्रहलाद के पास था ही, क्योंकि वो राजा का पुत्र था, खास उसके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया था, स्पेशल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल था, इंटरप्लेनेटरी स्कूल था, और खास जो दो बड़े डीम्स को चुनाया गया था, छंद और अमर, तो स्वाभाविक था कि सब लोग प्रहलाद जी के साथ मित्रता करना चाहते थे क्योंकि राजा का पुत्र है। लेकिन इससे ही बढ़कर प्रहलाद और भी अलग गुणों को प्रदर्शित कर रहे थे। वो क्या गुण था कि जो वहां का वातावरण असुरी वातावरण से वो प्रभावित नहीं हुए थे। हमारे मंदिर में सातवां स्कंद चल रहा है तो जगन्नाथ प्रिया प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे कि अगर कोई साधारण गुंडा होता हो वो अपने बच्चों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं रखता, बोला इसमें मत पढ़ो, ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है। कोई पिक पॉकेट रहो अपने बच्चों को पिक पॉकेट नहीं बनाना चाहता। अगर बड़ा माफिया हो तो फिर वो बोलता है लेगेसी कंटिन्यू करो, आपको जारी रखना है। तो हिरण्यकश्यप कोई साधारण गुंडा नहीं था, उन्होंने ब्रह्मांड को नियंत्रण किया था, इंद्र चंद्र अग्नि सूर्य वायु, भागवत में कहा है कि केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ के सबके सब उसके अधीन में आ गए थे, केवल उसके भ्रुकुटी को हिलाने से देवता का डर जाते थे। तो स्वाभाविक है कि वो लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता था, लेगेसी को कंटिन्यू यानी कि वो मरना ही वाला नहीं था उसका वो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में वो ट्रेन करना चाहता था। और इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, भेद की भावना। जहां भौतिक शिक्षण है वहां भेद की भावना है पहले से ही। खास करके अगर कोई ज्यादा होशियार होते हैं उनमें तो भेद की भावना सबसे ज्यादा होती है, हमेशा देखते रहते कि कौन मेरा कॉम्पिटिटर है। इसलिए इस भेद की भावनाओं को बढ़ाने के लिए धर्म साम दान दंड भेद, ये उनका थीम था एजुकेशन का, कैसे साम से दंड से दान से भेद से हम शत्रुओं को जीत सकते हैं, शत्रुओं के ऊपर काबिज रख सकते हैं, शत्रुओं के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, शत्रुओं को खरीदी कर सकते हैं। तो ये शिक्षण प्रहलाद जी को बचपन से पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो इसके कारण स्वाभाविक है कि सारे मित्र उनके पास प्रश्न करने लगे, ये कहां से सीखा, हमको तो हमारे माता पिता ने इसको कभी नहीं सिखाया था, तुमको किसने सिखाया। तो प्रहलाद महाराज जी बता दे कि किस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि से ये ज्ञान को हासिल किया, कब, जब वो माता के गर्भ में निवास कर रहे थे, और इसलिए जब उनके जो गुरुजन उनको प्रश्न करते हैं, जब पहली बार प्रहलाद महाराज जी गए उनके पिता के पास और पिता ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी लिखते हैं पिता ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रश्न नहीं किया, निर्दिष्ट रूप का कोई प्रश्न नहीं किया, वो सोच रहे थे अगर निर्दिष्ट कुछ प्रश्न करो तो प्रहलाद जी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जनरल प्रश्न किया ताकि जो भी उत्तर दे उसमें वो भी प्रसन्न रहेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हिरण्यकश्यप वाज एक्सपेक्टिंग सिंपल आंसर बट येट नॉट प्रैक्टिकल, वो सरल उत्तर की अपेक्षा कर रहा था लेकिन इस उत्तर में कोई लाभ नहीं है, ऐसे ही बच्चों से पूछना। परंतु प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को जो प्रश्न का उत्तर देते हैं, बच्चा तो क्या सीखा स्कूल में, आई बोले से कुछ फायदा नहीं, लेकिन पिताजी प्रसन्न होता है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को जब प्रश्न पूछा, 5 साल का बालक, कौन सा कैसा हो, तत्साध मुन्ने सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्रिग्न रिया मसद ग्रह हित्वात्म पातम ग्रह मंद कुपम वनम गतये धरिमाश्रय। अगर हम इधर प्रहलाद का स्कूल चालू करेंगे और अभक्तों के भी बच्चे आ जाएंगे और वो जाकर अपने पिताजी को कहता है राक्षसों में से श्रेष्ठ राक्षस तो इधर घर में अंधकूप में पड़ा हुआ है, जंगल में क्यों नहीं जाता भक्ति करने के लिए? अगर पिताजी को ऐसा कहेगा तो क्या होगा? वो आएंगे इधर डंडा लेकर, किसने सिखा मेरे बच्चे को, बिगाड़ दिया है। वो पिता को देखो सम्मान नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप वो हंसे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जब पहली बार भक्त बनते हैं लोग तो पहला उसको लोग हंसी मजाक उड़ाते, बाद में देखते हैं ज्यादा ही गंभीर है तो फिर क्रोध करने लगते। तो प्रहलाद महाराज के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यप ने सुना, सोचा अरे कहां से सीखा है, इंटेलिजेंस स्पॉइल बाय माय एनिमी, मेरे शत्रुओं ने इसका किसी न किसी प्रकार से भक्ति को भ्रष्ट किया है। शंडर अमर को कहा देखो बाहर से कोई आ रहा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक इसके ऊपर ध्यान रखो और ये सब मत सिखाओ। और जब वो दोनों जाकर लेकर जाते हैं प्रहलाद महाराज को और उसको ये चार जो डिप्लोमेसी का ज्ञान देने लगते, पॉलिटिक्स ये बहुत ही चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि नीति और राजकारण साथ में नहीं जाता। चाणक्य पंडित राजकारण में प्रवेश करने के पहले वो लोगों को नीति सिखा देते, बोले कि राजकारण एक वेशा के समान है, वहां कोई नियतता नहीं रहती, वहां कोई क्लीननेस नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपना नीति का स्कूल भंग कर दिया। अगर पॉलिटिक्स में घुसना हो तो फिर पी पूरा उसमें घुस जा। दूसरों को जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए क्या नहीं किया, ऑफकोर्स उनका उद्देश्य था राजा अच्छा बनना चाहिए, तो वो अच्छा बनाने के लिए उन्होंने राजकरण का उपयोग किया। तो जब प्रहलाद महाराज से पूछे तुम कहां से आए, शत्रुओं के वचन कहां से सुना, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं पहले सुना था मेरे गुरु से कि माया के प्रभाव से लोग क्या नहीं करते, आज मैं स्वयं देख रहा हूं। बोलते कि संडर अमर को मैं देख रहा हूं जिनको माया का प्रभाव हो गया और माया के प्रभाव होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, अनशन रख रहे, गलत बातें कर रहे, ये अलग है, ये मित्र है, ये शत्रु है, मैंने सुना था अभी मैं देख रहा हूं। देखो अगर ऐसा स्पष्ट कोई बच्चा अपने टीचर को बोल रहा है, प्रोफेसर डीन को कह रहा है कि मैं सुना था कि हमारा डीन पागल है, आज मैं स्वयं देख रहा हूं, तो कितना गुस्सा हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये दुर्बुद्धि है इस भेद को देखना, इसलिए सातवां स्कंद है पूरा ये दोनों का कंपटीशन है, प्रहलाद जी का और हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप की भावना क्या है, हिरण्यकश्यप की भावना है हर चीज में भेद देखो, पहले से ही जैसे उसकी भाई की मृत्यु हो गई, भगवान जो किसी का पक्ष नहीं लेते हमेशा वो सबके साथ समान दृष्टि से व्यवहार करते हैं, उनको हिरण्यकश्यप ने इल्जाम लगाया, दोष लगाया कि देखो विष्णु सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जानते थे कि विष्णु भगवान है। हिरण्यकश्यप कितना भी बड़ा राक्षस हो उसने कभी भगवान के अस्तित्व को नकारा नहीं, कभी वो बोला मैं भगवान को मारूंगा, देखो मतलब भगवान है तो मैं उनको मारूंगा, ऐसी भावना थी। लेकिन आजकल के नास्तिक, आजकल के जो राक्षस जो हिरण्यकश्यप के कहां भी नहीं लगते, कितना उनके अंदर शक्ति है लेकिन उतना गर्व है, वो कहते कि भगवान का अस्तित्व नहीं, देयर इज नो गॉड, परंतु हिरण्यकश्यप ने ऐसा कभी नहीं कहा, दुर्योधन ने भी ऐसा कभी नहीं कहा। दुर्योधन अपना नया फिलॉसफी बनाया, उसने कहा देखो भगवान ये गर्ग संहिता में आती, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण को जब कृष्ण आए थे हस्तिनापुर वो समझा रहे थे उसको कि तुम पागल सा व्यवहार मत करो, पांडवों के साथ मित्रता करो, आपका भी भला हो जाएगा। बोला नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं मेरे नियंत्रण में नहीं हूं। बोलते मैं अहम यंत्र, अहम यंत्री, अहम यंत्र तुम यंत्री। बोलते कि आप यंत्री हो, यानी कि ऑपरेटर हो, और मैं मशीन हूं। और जिस प्रकार से ऑपरेटर मशीन को चलाता है, उस प्रकार मशीन चलती है। तो इसीलिए मैं जो कुछ भी करता हूं वो मेरे उत्तरदायित्व नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, वो आपका उत्तरदायित्व है। गलत कर दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं तो केवल क्या हूं, यंत्र हूं। यथा नियमित तथा करो मी, जिस प्रकार से अब मुझे चलाते वैसा मैं चलता हूं। देखिए पाप कर रहा है और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को दे रहा है, भगवान को कम से कम मानता है, गलत फिलॉसफी है लेकिन भगवान को मान रहा है। तो हिरण्यकश्यप भी वो पहले से ही भेद देख रहे थे कि विष्णु गलत किया, जैसे कि अपने भक्तों के वचनों को सुनकर, मीठे मीठे वचनों को सुनकर, जिस प्रकार से छोटा बालक अगर कोई उसको लॉलीपॉप दे दिया, कोई मिठाई दे दिया, तो उसके वश में आ जाता है, वैसे ही विष्णु इतना बालिश बुद्धि का है, देवताओं के वश में आकर छोटे प्रार्थनाओं के कारण इतना बड़ा पक्षपात किया, मेरे भाई को मार दिया, इतना अच्छा जेंटलमैन था। तो पहले से वही देख रहा है हिरण्यकश्यप, और अंत तक उसी को देखता है। और प्रहलाद महाराज जी क्या देख रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी उस भेद को देख नहीं सकते। ये संघर्ष जो है कि भगवान भेद करते हैं और भगवान भेद नहीं करते हैं, भगवान कई निर्दिष्ट जगह से प्रकट होते हैं, और प्रहलाद जी कहते नहीं, सब जगह से आते हैं भगवान, सब जगह से आ जाते हैं भगवान। मैं एक पढ़ा, एक क्रिश्चियन मिनिस्टर कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, इट डजंट मीन दैट एवरीवन इज गॉड, ये वैष्णव सिद्धांत है। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे, जब दरिद्र नारायण कहना और धनिक नारायण नहीं कहना, ये भी हिरण्यकश्यप की वृत्ति है, भेद करना कि भगवान सब जगह में नहीं, जो आपकी इच्छा है उधर भगवान को देखो, जहां आपकी इच्छा नहीं उधर भगवान को मत देखो, ये भी राक्षसी वृत्ति है। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को समझा रहे हैं, या अपने मित्रों को प्रवचन कर रहे हैं कि सबसे महान आत्म साक्षात्कार का लक्षण क्या है, कि सब जगह में भगवान को देखना, हर वस्तु में, हर स्थिति में, हर अवसर पर जब कृष्ण को हम देखते हैं, हमने भक्ति में प्रगति किया है, दे हमें ट्रिमेंडस एडवांसमेंट। अगर वहां कृष्ण को नहीं देखना, ये हम हिरण्यकश्यप के जो विज्ञान है उसका आश्रय लेने के समान है। और यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये बहुत ही उच्च फिलॉसफी है, महाभागवत का दृष्टिकोण है, हम सबको महाभागवत बनना ही है। जब तक उस स्तर को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान का धाम क्या है, भगवान का धाम और भौतिक दुनिया में अंतर क्या है, अंतर भावना की है। एवरीथिंग बिगिंस विद कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी अपने कई बार अपने इसमें लिखते हैं, मैटर जो वस्तु है उसका प्रकटीकरण कैसे होता है, व्हाट कम्स फर्स्ट, सटल और ग्रॉस। सब कुछ सूक्ष्म वस्तुओं से आता है, कॉन्शियसनेस से कोई वस्तु नहीं है, कॉन्शियसनेस से, भावना से सब कुछ निकलता है। जैसे कि माइक किस प्रकार से प्रकट हुआ, किसी के मन में पहला विचार आया, थॉट आया, थॉट इज सटल, और उस थॉट का पैटर्न धीरे धीरे से धीरे धीरे से स्तर पर, अलग अलग स्तर पर, फिर वो थॉट वर्बल हो गया, किसी के साथ डिस्कशन किया कि कैसे ऐसे चीज को बना सकते हैं। वर्बल इज थोड़ा थॉट से थोड़ा ग्रास है, फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार का डिजाइन किया गया, डिजाइन के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे हमारा मंदिर अभी तक केवल डिजाइन के रूप में बना है 3 साल से, डिजाइन से और आगे बढ़ना चाहिए। अभी वृक्ष आ गए, ईट आ गए, तो डिजाइन आ जाता है। फिर डिजाइन के बाद उसका बाहर का सब मटेरियल असेंबली कर देते हैं, फिर से उसको कनेक्शन लगा देते हैं। फिर माइंड जो थॉट से हमारे विचारों से वो इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। वैसे कॉन्शियसनेस सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जगत के लिए जाना ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं हिरण्यकशिपु क्यों राक्षस था, रावण क्यों राक्षस था। रावण और हिरण्यकशिपु यांत्रिक विधि से स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते थे। रावण देखो कितना मूर्ख था, वो सीढ़ी लगाना चाहता था यहां से स्वर्ग लोक के लिए, सब लोग चढ़ के जा सकते हैं, उधर टोल नाका होगा, फिर इकट्ठा करने के लिए पैसा, जिसके पास पैसा है वो स्वर्ग जाएगा। तो यांत्रिक विधि है, इस यांत्रिक विधि से कोई ऊपर के लोगों को जा नहीं सकता। स्पेस शटल, स्पेस में आजकल प्रभुपाद जी के समय से लोग वहां लैंड बेच रहे, एक ना एक दिन हम लोग वहां निवास करेंगे। उनके पास कुछ भी नहीं है, लैंड बेचने वाला भी देखो कितना धोखा दे रहा है, और लैंड खरीदने वाला उससे भी बड़ा मूर्ख। यानी कि भौतिक जगत में जब कृष्ण भक्ति नहीं हो, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो, लोग कैसे पागल बन जाते हैं हम देख सकते हैं, और खूब मजा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज कृष्णस जोक, भगवान का जोक क्या है, भगवान कहां जोक लेते हैं। वो कहते कि जब भौतिक जगत में देन पीपल मेक प्लान दैट इज कृष्णस जोक। जब भौतिक लोग प्लान करते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उधर जाऊंगा, मून में होटल बनाऊंगा 5 स्टार, तो बहुत लोग आएंगे, फिर पैसा कमाऊंगा, मतलब दैट प्लान सिंपली गिव्स लॉफ्टर टू कृष्ण। भगवान इनके प्लानों को देखकर हंसते। तो यहां हिरण्यकशिपु वो यांत्रिक दृष्टि से जो भी पाप कर रहा है उसको क्या करना चाहते थे, उसको पुण्य का लाभ, और जो पुण्य कर रहे हैं उनको नरक में भेजो, सब कुछ बदल देना भौतिक दृष्टि से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने कहा एक बार, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं हम कहां से गिरे हुए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरे हुए। ओके, तो व्हाट इज फॉलिंग डाउन, गिरना है नहीं कि क्या, जहां भगवान की सेवा की भावना से अलग हो गए अपतित हो, भगवान की सेवा के लिए जुड़ गए अब गोलोक में हो, इतना इतना ही अंतर है। गोलोक में रहना और भौतिक जगत में रहना अंतर कितना है, केवल अपनी चेतना की। जब हम सोचते कि मुझे कृष्ण की सेवा नहीं करना है, वी आर फॉलन, ज्यादा समय नहीं लगता हमारा जो जर्नी है गोलोक से यहां आना। ऐसा नहीं था कि बॉम्बे से कलकत्ता पैसेंजर में जाने के समान नहीं था, धीरे 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 आ गए हम लोग, फिर बहुत समय लगा आने के लिए, नहीं, एक क्षण के अंदर, लेस देन अ मोमेंट, जब चेतना आ गई कि मुझे भगवान से अलग होना है तो हम पतित हो गए। इसलिए इतना ही आसान है भगवान का शुद्ध भक्त बनना, जितने आसानी से हम गिरे हुए उतनी आसानी से हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसा, कि अर्जुन ज्यादा समय नहीं लगता, न चिरात, बहुत जल्दी से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये आश्वासन देते हैं, 7 दिन तो बहुत हो गए, 7 दिन टू मच। खटवांग राजा महाराजा, खटवांग महाराज ने कितने क्षण के अंदर, एक क्षण के अंदर अपनी चेतना को भगवान की चेतना में जुड़ा दिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए देखिए यहां ये प्रहलाद जी की जो भावना को प्राप्त करना लगता है कि बहुत कठिन है, हम हमारे भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं, दुविधा हमारे भावनाओं में। बाहर के लोगों को तो छोड़ दो, वहां कृष्ण को देखना बहुत ही कठिन है, जिनको प्रति हमारा प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनमें कृष्ण को देखना बहुत कठिन था। वो छोड़ो, हमारे नहीं, हमेशा संघर्ष चलता रहता है, भक्ति करूं या नहीं करूं, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। मेरा समय ठीक से व्यतीत हो रहा है, इसमें बर्बादी है। कितने लोग ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ये भौतिक जगत में भक्ति करने वाला भी एक प्रकार का नास्तिक ही है। उसको कहते हैं एक फिलोसफिकल आस्तिकता, यानी कि तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से अब आस्तिक हो, पर तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अब नास्तिक हो, पूरा विश्वास नहीं है। तो इसलिए संघर्ष ये हमेशा के लिए चलता रहता है। परंतु जब प्रहलाद की भावनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे और एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो, इसलिए जीवन मुक्त बनना या शरणागत भक्त बनना, जब हम शरणागत की बात करते हैं हमें लगता है कि अरे बहुत कठिन है, सरेंडर बनना भगवान को कितना कठिन है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को शरणागति का स्टेप्स बताते, धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। ये लॉफ्टी आइडिया है, बराबर है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमारे शक्ति के अनुसार महाप्रभु ने ऐसा सिद्धांत दिया। कैसे, हाउ डू यू नो, कैसे जान सकते कि आप शरणागत हो? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये पहला प्रिंसिपल है अनुकूल्यस्य संकल्प। देखिए, ये शरणागति का एक लक्षण है, चार नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना और भक्ति के लिए अनुकूल कार्य, अनुकूल वातावरण को प्राप्त करना, ये शरणागति का पहला लक्षण है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, और भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना, सिनेमा देखना, ये प्रतिकूल है, प्रजल्प करना ये प्रतिकूल है, तो इसको छोड़ देना। कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिकल है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिसिति विश्वासो, थर्ड लेवल थोड़ा मेंटल लेवल का। पहले दो क्या था, फिजिकल था, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, पॉजिटिव को लेना कोई बड़ी बात नहीं, नेगेटिव को छोड़ना थोड़ा कठिन लगता है। और तीसरा है वो मेंटल लेवल का है, रक्षिसिति विश्वास हो, कि भगवान के प्रति ऐसा विश्वास रखना कि वही सब कुछ करेंगे। और अंतिम स्तर है शरणागति का, वो क्या है, नहीं, अंतिम स्तर है आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप पांचवा है, कार्पण्य छठा है, नम्रता ह्यूमिलिटी एक छठा है। ये शरणागति का लक्षण है, जो हेल्पलेस बन जाता हो वही नम्रता दिखा सकता है। जब तक हम सोचते कि सेल्फ मेड पर्सन, भौतिक जगत में हम देखते हैं जो भी सेल्फ मेड, मैं मेरे खुद के पैर पर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के लिए जमीन आपने बनाया क्या? तो लोग कहते देखो मैंने खुद खड़ा हो गया। ये जो अहंकार है, ऐसे लोगों को भक्त में परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। क्यों? जो उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया है डिपेंडिंग फैक्टर क्या होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर करने की जो कला है उसमें निष्णात नहीं होते, पहले से संघर्ष करके अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं और हमेशा यही कहेंगे भगवान ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, आई स्टूड ऑन माई ओन लेग्स, मैं खुद के पैर पे खड़े हो गए। परंतु संस्कृति क्या है, बचपन से ही जब माता पिता के ऊपर निर्भर करना, निर्भरता का लक्षण हमें क्या करता है, आगे जाकर वो कल्चर को लेकर आता है। हाँ, हमें डिपेंडेंट फैक्टर है, हम लोग, हमें डिपेंडेंट होना होगा भगवान के प्रति। और भगवान गीता में क्या सिखाते हैं, इंटरडिपेंडेंस, देवताओं के साथ आप एक सहकार्य का कॉर्ड रखो, जिससे कि क्या होगा, आप उनसे मांगो देते रहेंगे। इंटरडिपेंडेंस से फिर अल्टीमेटली जो सुप्रीम इंडिपेंडेंट मास्टर है कृष्णा, उसके प्रति आप पूरा डिपेंडेंट बन सकते हो। जब उनके प्रति निर्भर होने की कला से हम दूर चले जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मुझे समय नहीं है भक्ति करने के लिए। समय नहीं, इसका अर्थ क्या है कि हम बाकी जो स्वामी है, इस भौतिक जगत के स्वामी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर अपना जीवन देखेंगे हम, खास करके इस भौतिक जगत में ऐसा बना के रखा हुआ है, हर चीज के लिए लोकल ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो भगवान है, सुबह ऑफिस जाने के लिए अगर लोकल ट्रेन नहीं है तो हम बहुत चिंतित हो जाते, विचलित हो जाते, डिपेंडेंट रिक्शा वालों से डिपेंडेंट, जब वो स्ट्राइक करेंगे फिर हम चिंतित हो जाते। और बाद में एमटीएनएल मोबाइल वोडाफोन ये सब के ऊपर इतने निर्भर हो गए हैं। जैसे हमारे एक खेती में छोटा सा एक लड़का है सेवेंथ एट्थ में, किसान उधर उसको मोबाइल की जरूरत नहीं, पिताजी बोल रहा है अनिल मोबाइल मुझे मोबाइल चाहिए। ये निर्भरता देखिए कैसे है, भौतिक लोग कहते हैं कि भगवान के प्रति निर्भर होना स्लेवरी, स्लेव का मेंटालिटी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन के विरुद्ध कई लोगों ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, ये जो गौड़िया मठ क्या कर रहा है, ये गौड़िया मठ लोगों को गुलामगिरी सिखा रहा है, टीचिंग स्लेवरी। और अगले दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, गौड़िया मठ स्टैंड फॉर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग। गौड़िया मठ किसके लिए है, वो मनुष्य समाज की डिग्निटी के लिए। और हमारा डिग्निटी क्या है, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, भगवान के प्रति पूरा निर्भर। इसीलिए जो भी कहता है आई डोंट हैव टाइम, हमें जानना चाहिए वो भौतिक वस्तुओं का गुलाम बन गया है। कृष्ण के प्रति निर्भर होने से निकालकर अलग अलग वस्तुओं के निर्भर होने के कारण, उनका सेवक बनने के कारण वो क्या बन गया, वो गुलाम बन गया। इसलिए मराठी में वो कहावत थी, अभी तो कोई उसका पालन नहीं कर सकता, किसान भी व्यापार क्या हो, खेती उत्तम व्यापार मध्यम और नौकरी अधम। लोग सब खेती छोड़कर सबके गुलाम बनने के लिए जाते। ये जो कैपिटलिज्म क्या है, बड़े बड़े मॉल जाना, बड़े बड़े चेन जाना दुकानों के, बड़े बड़े जनरल स्टोर्स, एक ही आदमी उसका मालिक है और बाकी सब उसके नौकर है, ये कैपिटलिज्म है। एक आदमी स्वामी और बाकी सब उसके दास। उसे क्या हो जाएगा कि उसे लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, जब वो बुलाएगा तब जाना पड़ेगा, जब वो छोड़ेगा तब आना पड़ेगा। वो स्वतंत्रता न होने के कारण स्वाभाविक है हमारे मुंह से क्या शब्द निकलेगा, समय नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है नहीं कि आप स्लेव हो, क्योंकि आपने अपने स्वतंत्रता को बांट दिया। तो इसलिए ये जो भागवत ज्ञान है, एक दृष्टिकोण हम लोग लास्ट तीन दिन यही चर्चा कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण को पहले बदल देता है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन उसी रथ पर विराजमान थे कृष्ण के साथ, उन्हीं लोगों को देखा, भीष्म कर्ण द्रोण अश्वत्थामा कृपाचार्य, इनको देखकर क्या हुआ, वो बिगड़ गए, विचलित हो गए, शोकमग्न हो गए। और कृष्ण ने क्या किया, वातावरण को बदला नहीं, यही भागवत और भगवत गीता। डोंट चेंज योर सिचुएशन, अपने वातावरण को बदलने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि अल्टीमेट वातावरण क्या है, भौतिक जगत का दुखालय अशाश्वतम, कहां भी जाओगे वही वातावरण रहेगा। किस चेतना से बनी है भौतिक जगत, दुखालय अशाश्वतम। अगर आप झोपड़ी से साउथ मुंबई में चले जाओ, जैसे कोई 12 साल के लिए रिसर्च किया है, जो धारावी की जो झोपड़ी एक विशेष भाग में है, वो लोग दक्षिण मुंबई के लोगों से भी ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। कोई हमारे डिवोटी को कह रहा था, वाई बिल्ड टेम्पल्स, वाई नॉट हेल्प दिस पीपल, ये झोपड़ी में रहने वालों को मदद नहीं क्यों करते। तो हमारा डिवोटी ने उनको पूरा रिसर्च दिखाया, बोला यू आप कह रहे हो मदद करो इनको, लेकिन जानते हो लोग कितना पैसा खर्चा करते, दे स्पेंड मोर मनी। वो लोग दक्षिण बॉम्बे में रहने वालों से भी ज्यादा पैसा अपने इंद्रिय भोग के लिए खर्चा करते, फिर उनको क्या मदद करना है। आपका जो कॉन्सेप्ट है इनको मदद करो, यही गलत है, क्योंकि आप जानते नहीं हो ठीक, दे आर लिविंग मोर सेंसुअल लाइफ, ज्यादा इंद्रिय भोग वो लोग कर रहे हैं, उनके पास इम्यूनिटीज ज्यादा है, तो उनको अगर इतना सारा पाप करके इम्यूनिटीज को इकट्ठा किया हुआ है। और जो दक्षिण मुंबई में रहने वाले हैं, कितने साइकेट्रिक पेशेंट हैं, कितने वहाँ जो साइकियाट्रिक्स डॉक्टर उनका फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो इसलिए वातावरण को बदलने से कोई सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वातावरण क्या है, जन्म मृत्यु जराव्याधि का वातावरण है, इसके ऊपर सिक्का लगाया हुआ दुखालय अशाश्वत। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया, उनके दृष्टिकोण को बदल दिया, कुछ नहीं बदला, नथिंग चेंज, उसी स्थान पर थे वो, उनका स्थान भी नहीं बदला, लेकिन दृष्टिकोण को बदल दिया। इसलिए कहा जाता है आप अगर अपने इनर सेल्फ को बदल दिया, देन यू बिकम मास्टर ऑफ योर सराउंडिंग, यानी डेवलप सब्सटेंस ऑफ योर इनर सोल, आपके अंदर के ज्ञान को खोल देते हो तो फिर आप अपने सराउंडिंग के स्वामी बन जाते हो। ये भागवत का देन है, ये भागवत का गिफ्ट है, ये प्रभुपाद जी का गिफ्ट है। प्रभुपाद जी का गिफ्ट क्या है, बड़े बड़े मंदिर है, किताब या भक्त, ये सब उनके गिफ्ट है, लेकिन सबसे ऊंचा गिफ्ट क्या है, ये दृष्टिकोण प्रदान करना, चेंज ऑफ विजन। और जब जो विजन जो चेंज हुआ है, बदला हुआ है, उस दृष्टिकोण से जब हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं, तब क्या होगा, हम सब कुछ उस दृष्टिकोण से देखने के कारण इस भौतिक जगत से स्वाभाविक रूप से अनासक्ति हो जाती है कि दिस इज नॉट माई प्लेस, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे यहां से निकलना है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस अपने आप। तो फिर कितना भी बड़ा घर हो क्यों ना हो, व्यक्ति उससे आसक्त नहीं होता, परंतु जिसकी दृष्टिकोण नहीं है वो अपने झोपड़ी से भी कितना आसक्त रहेगा, वो उधर से निकलना नहीं जाए चाहेगा, क्योंकि वो दृष्टिकोण नहीं है। ये भागवत की जन है। इसलिए फोर्थ कैंटो पांचवें स्कंद में अलग अलग जो स्तर है जीवन मुक्त बनने के लिए, उसका बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आठ स्तर है उसके, ये पांचवें स्कंद में आता है। पहला है जीवन मुक्त का लक्षण, वो है अपहत पाप। अपहत पाप यानी कि पाप करने की वृत्ति है उससे मुक्त होना, टेंडेंसी टू सिन, उससे मुक्त हो जाना। वो देखता है कि पहले तो ग्राफ है, हमें केवल चार नियमों के बारे में जानकारी, पहले वो भी जानकारी नहीं थी, जानकारी हो गई प्रभुपाद जी की कृपा से, उसको पालन करना, परंतु धीरे धीरे उसे वो वहां रुकता नहीं है, वो पाप के साम्राज्य को और अपने भक्ति के दृष्टिकोण से देखता है, ये भी पाप है, ये भी पाप है, इसे नहीं करना है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, भरत को राम ने क्या पूछा कि आप इतने मंद लग रहे क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपको गलत समय में निंदा रहा है, भागवत में निंदा ना ये पाप है। राम के अनुसार भगवान राम जी कह रहे हैं कि गलत समय पर नींद आना ये पाप है। देखिए क्या प्रश्न कर रहे हो, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे सटल क्वेश्चन पूछा गया रामायण में भरत को, जैसे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भी ऐसे प्रश्न करते हैं, अर्जुन का चेहरा देखते हैं गिरा हुआ है, आंखों में से तेज निकल गया है, बहुत दुर्बल लग रहा है। जब वो आते युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न करते, एक प्रश्न उन्होंने ऐसा किया कि आप अकेले में खा रहे थे दूसरों के साथ, दूसरों को देने से आपकी इच्छा नहीं थी, इसलिए अकेले में छुपके छुपके अकेले में खा रहे थे, इसलिए आप इतने दुखी लग रहे हो, बांट के खाना, जैसे बचपन में अगर कोई अकेला खाएगा तो पेरेंट्स लोग कहते थे आपके पेट में जलन होगा, क्योंकि आप बांट के नहीं खा रहे, ये स्वाभाविक लक्षण था। इसलिए तमाल कृष्ण महाराज ने एक पेपर लिखा था, बोले वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति वो ऐसी है, उन्होंने एक बार देखा बंगाल में एक वृद्ध व्यक्ति, वो क्या कर रहे थे, हर रोज आटा लेकर फेंक रहे थे ऐसा रास्ते पर, जैसे जो अपना खेती जैसा होता है वहां फेंक रहे थे, और बहुत आश्चर्यचकित हो गए तमाल कृष्ण महाराज, क्यों आटा फेंक रहा है ऐसा, ये कौन सा रिचुअल है वेस्टिंग आटा। फिर उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि आटा क्यों फेंकते हो, उन्होंने कहा देखो कि मेरी इच्छा थी कि हमारा संस्कृति भी है कि जो कुछ ना उसको बांट के खाओ, मैं बचपन से सोचता था कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को हर रोज खिला, लेकिन उतना पैसा मेरे पास नहीं है। अगर 10,000 आदमी को नहीं खिलाता हूं, कम से कम 10,000 चीटी को तो खिला सकता हूं, लेकिन खिलाना ही महत्वपूर्ण है, वितरण करना। वो बोलने लगे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, आपका दुख का कारण क्या है? आजकल लोगों को अगर कुछ दुख हो गया, शारीरिक कुछ गलतियां हो गई, कोई कर्म के दृष्टि से नहीं ले सकता, सीधा जाओ एलोपैथी टैबलेट ले लो। छोटे बालक भी अगर सिर दर्द चालू हो गया, मेटासिन ले लो, तुरंत इमीडिएट रिलीफ चाहिए, सहन करने की शक्ति चलेगी। कुछ दांत दर्द है उसको सहन करो, सहन कराना एक लक्षण है रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए। नींद आ गया तो सो जाओ, खाने की इच्छा हो गई तो खाओ, फिर समय नहीं, रात को 2 बजे ही। तो इस प्रकार से जब वो पाप के वृत्ति से भक्त धीरे धीरे ग्रोस जो स्थूल है वो तो बंद कर देगा, लेकिन सूक्ष्म पाप से भी दूर रहने के लिए प्रयास करता है, वो पहला जीवन मुक्त का लक्षण है। प्रभुपाद जी लिखते अपहत पाप विजर, विजर रहने की दूसरा गुण है उसका, वो क्या है कि वो आगे जाकर एक जीवन के बाद वो जन्म मृत्यु का जो प्रभाव है उससे अलिप्त होने की इच्छा रखता है कि मुझे उसका प्रभाव नहीं चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, उससे दूर रहने का प्रयास करना। और तीसरा है विमृत्यु, विमृत्यु होने की प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उसको कैसे चुनौती देना है। लोग इस विषय को दूर रखना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में एक बार किसी ने पूछा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कि आपको सबसे बड़ा डर किसका है, अगर आप फिलोसोफर हो और सब आप बोलोगे डेथ इज द ग्रेटेस्ट फियर कॉजिंग एलिमेंट, लेकिन 67% उन्होंने क्या कहा, पब्लिक स्पीकिंग हमें बहुत डर लगता है। देखो किसको ज्यादा महत्व दे रहा है कि लोगों में बोलने में उनको डर लगता है, और केवल 3% लोगों ने कहा हमें मृत्यु से डर लगता है। लेकिन डिवोटी बार बार मृत्यु के बारे में चर्चा करेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, कृष्ण कहते हैं हम विग्रहों का दर्शन केवल दिन में कई घंटे के लिए कर सकते हो, लेकिन ये 24 आवर दर्शन खुला रखना चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में। क्यों? ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर करो। हाँ, सुबह में सोच रहा था कि अभी कितने बचे हुए, कितना साल बचा हुआ है, प्रतीक्षा करना। ऐसे प्रतीक्षा करने से स्वाभाविक है भक्ति तीव्र हो जाती है। हम जानते हैं कि मेरा केवल 5 साल बचा है, केवल 10 साल बचा है, कल भी मर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचा ठीक है, अगर सामान्य कॉमन सेंस से अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कीप कैलकुलेटिंग कितना बचा हुआ, हाउ मच यू गोइंग टू सर्वाइव। तो ऐसे सोचने से क्या होगा, हम जन्म मृत्यु को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के पास जब मृत्यु आ गई, उन्होंने क्या किया, मृत्यु को स्टेयरकेस बनाया और उसके ऊपर चढ़ के वे वैकुंठ विमान में चले गए। ये तीसरा जीवन मुक्त का लक्षण है। और चौथा है विशोक, विशोक यानी कि हर चीज के लिए खेद नहीं करना, हर चीज के लिए खेद करना। प्रभुपाद जी कहते हैं लैमेंटिंग फॉर अननेसेसरी रीजन, ये क्या है, ये शूद्र का लक्षण है। शूद्र कोई समाज नहीं है, शूद्र भावना है कि जो व्यक्ति हर चीज के लिए खेद करता रहेगा, हर चीज के लिए। देखते हैं हम लोग, बच्चे लोग हर चीज के लिए रोएंगे, अगर बड़े लोग हर चीज के लिए रोते रहेंगे तो क्या है, लैमेंटेशन वो ठीक नहीं। विषयों के यानी कि उस स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना कि हम दुख और सुख के परे हो जाए। जहां ज्यादा सुख का अनुभव करोगे वहां ज्यादा दुख रहेगा, ये डुअलिटी है। जो एक्साइटेड हो जाए ज्यादा, जैसे बद्रीनारायण को एक कहानी सुना है, सही कहानी है। दो पति पत्नी, एक पति पत्नी वो हॉर्स रेस के लिए गए थे और उन्होंने क्या किया, चौकी लगाया कि ये हॉर्स जीतेगा और उन्होंने पैसा लगाया और बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा अंतर था वो हॉर्स जीतना। अगर हॉर्स जीत जाता तो उनको कम से कम $1,000,000 मिलने वाला था और जानते थे ये संभव नहीं है, लेकिन क्या हो गया, वो घोड़ा जीत गया। वो जो घोड़ा जीत गया उनको $1,000,000 मिल गया। वो टिकट रहता उसको, वो टिकट लेके वो जा रहे थे अपना डॉलर इकट्ठा करने के लिए। तो वो समाचार इतना बड़ा बोझा बना दिया वो आदमी को, बुढ़ा था पहले से ही, तो उसको सहन नहीं कर सका तो नीचे गिर गया, हार्ट अटैक आ गया उसको, मैसिव अटैक आ गया। तो मैसिव अटैक आने के कारण उसके हाथ का जो टिकट है वो उड़ गया, हवा के कारण उड़ गया। अभी पत्नी सोच रही थी टिकट लेने के लिए जाओ या मेरे पति को बचाओ, टिकट भी चला गया और पति भी चला गया, ऐसा हो गया। बोलो तो देखो, जहां ज्यादा एक्साइटमेंट है सुख का, उतना ही तीव्रता से आपको दुख आएगा। ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाना सुख में, ज्यादा मौज करना, जैसे भारतीय लोग जब क्रिकेट में जीतते हैं जैसे कि पूरा वही खेल रहे, ऐसा करके फटाका बजाते हैं जैसे कि वही खेल रहे, वही जीत गए, उनका प्रॉफिट हो गया, अपना पैसा जलाते हैं। और लोग जीते या हारे जितना पैसा ले जाना चाहिए उतना पैसा ले जाते अपने घर में। जब ज्यादा सुख और जब हार गए तो जिनको इतना चढ़ाते हैं उनकी स्तुति करते, उनके घर को तोड़ो मोड़ो सब कर देते। ये क्या है कि ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा दुख का कारण बन जाता है। इसलिए न तो सुख में ज्यादा आनंद लेना चाहिए और दुख को सहन करना चाहिए। ये जीवन मुक्त का और एक लक्षण है। और आगे प्रॉपर्टी कहते विधि खतर, इच्छा रखना कि भौतिक जीवन में ये हो गया, क्योंकि जहां सुख ज्यादा है ज्यादा दुख भी है। विधि खतर यानी कि प्रयास करना कि भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के लिए उससे दूर रहो, अवॉइड करते रहना, उससे इंद्रिय भोग से दूर रखने के लिए प्रयास करना। ये भी जीवन मुक्त का एक लक्षण है, क्योंकि यही संस्पर्श जब होगा, जहां सुख है वो क्या करेगा, वो फिर संस्पर्श जा सुख ही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण कहते हैं उसमें वो भाग लेने से इनकार करेगा। और आगे छठा है अपिपात, अपिपात छठा है, इंद्रिय भोग से दूर हट गए लेकिन दूसरा कोई तो सुख चाहिए, वो क्या करेगा, कृष्ण की ही सेवा में संलग्न होने के लिए अपना इच्छा रखेगा। एक लंदन में उनका देखरी है और वहां एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं 60 साल के, हर रोज आकर वो बेकरी में सेवा करते और हर शनिवार के दिन रात को बेकरी को रीअरेंज करते। कितने 20 साल से कर रहे थे वो, रात को 9 बजे उनका काम चालू होता है और सुबह 6 बजे तक वो पूरा, क्योंकि दिन भर बेचना होता है, 30 साल से कर रहे हैं, रात भर उसको रीअरेंज करना, इन्वेंटरी करना, उसमें वो आनंद लेते सेवा करने में। और एक डिवोटी है, उनका सेवा है भक्तिविधान मैनर में, बहुत बड़ा गेट है, गेट के बाहर जिप्सी लोग निवास करते, पहले उन्होंने गेट बनाया था, वो गेट को ही चोरी किया था उन लोगों ने, गेट को चोरी करके लेके गए। और इतना तक कि जिप्सी लोग सोचते लंदन अच्छा है, उधर भी चोर लोग है, ऐसा नहीं कि चोर नहीं, उधर जेंटलमैन का देश है। वो तो गेट उठा कर गए और बाद में मंदिर का जो हुंडी बॉक्स है उसको भी लेकर गए थे, तो बहुत बड़ा गेट लगाया हुए। और ये डिवोटी बाहर रहते मंदिर के बाहर, जब तक हर एक डिवोटी मंदिर में वापस नहीं आता कार्यक्रम करके, तब तक उसकी प्रतीक्षा करते हो। और एक बार सब भक्त लोग आ गए अंदर, बुक देखा कि सब आए हुए हैं, वो क्या करते हैं फिर गेट को लॉक करके सिक्योरिटी को देके वो चले जाते हैं और सुबह आकर गेट खोलते हैं। वो कितने साल से सेवा कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल सेवा में भाग लेना, संलग्न होना। मंदिर में केवल ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी ही सेवा करेंगे, ब्रह्मचारी को तो करना ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भक्त समझता है उसको कुछ न कुछ कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, प्रैक्टिकल सर्विस। उसे भगवान के साथ संबंध हो जाता है। देखिए, हर शनिवार के दिन बिना तनख्वाह क्या इम्पेटस क्या है, कैसे सुख मिलता है? सेवा में ही सुख मिल जाता है। एक बार चालू हो गया है उसी सेवा में उनको सुख मिलता है। वहां जो हेड कुक है, जन्माष्टमी के में समय है, 80,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं वो लोग, और बाहर का कोई कुक नहीं, सब डिवोटी लोग बनाते हैं। और हेड कुक एक माता जी है 60 साल की, क्या 4 आइटम देते हैं वो लोग खाने के लिए, भगर का खिचड़ी और बाद में सब्जी, एक स्वीट और पूरी, 60-80 हजार लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं। और जो भी कुकिंग है, कोई फेस्टिवल है, कोई सन्यास आ गए, कोई गुरु आ गए, जो लोग ज्यादा आ गए वो किचन में सेवा करने के लिए तैयार। और एक डिवोटी है, प्रभुपाद जी के शिष्य है, वे हर रोज बैकअप सेवा करते हैं, बर्तन साफ करना। कितने साल से कर रहे हैं सेवा करने में वो लोग बहुत उस्ताद है। जन्माष्टमी में समय एक लेबर को नहीं लेते अपने यहां, एक भी लेबर नहीं होता, सब कुछ। कई पीएचडी लोग मैंने देखा, कई पीएचडी लोग एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी लोग हैं, वो जन्माष्टमी के 2 महीने से सेवा में संलग्न हो जाते हैं। 2 महीने से पहले से वो आकर हम देख रहे थे, पेंटिंग करने का काम, पेंटर को नहीं बुलाते, बर्तन साफ करने के लिए सब खुद करेंगे, वो उनको अच्छा लगता है। एक प्रोफेसर और एक पीएचडी मैनेजमेंट में, फाइनेंस में पीएचडी किया हुआ, वो आकर पेंटिंग, वो कह रहे थे हम लोग एक पैसा लेबर को नहीं देते जन्माष्टमी के खर्चा के लिए, सब कुछ हम खुद करते। तो सेवा जो है अपनी पात्र डिजायर ओनली टू द एंगेज इन कृष्ण एक्टिविटी, ये भी जीवन मुक्त का ही लक्षण है। और एक पार्किंग करना, उधर 40,000 कार आते जन्माष्टमी के समय, 40,000 कार्स, और जो कार पार्किंग की सेवा करता हो, एक डिवोटी कह रहा था वो 12 साल का था तब से कार पार्किंग में सेवा कर रहा है, वो 22 साल का है, बोला कि जन्माष्टमी का दर्शन मैं 3 मिनट के लिए करता हूं, बस 3 मिनट के लिए दर्शन, दर्शन करने के लिए समय नहीं, लोगों को कार सही जगह पर ले जाना, उनको वहां से फिर मंदिर तक दूसरा मंदिर के कार से अरेंज करना उनको ले आने के लिए। अरे कई डिवोटीज कार पार्किंग की सेवा कितने साल से कर रहे हैं, दर्शन कभी मिलता ही नहीं उनको, कार का ही दर्शन करते रहते, उधर ही भगवान को दर्शन कर, बहुत ही प्रेरणा देने वाला है कि ऐसे सेवा करते रहते। और सातवां है सत्य काम। सत्य काम यानी कि उसकी सारी इच्छाएं कहां निर्दिष्ट हो जाती है, कृष्ण के लिए, ये ओनली थिंग्स फॉर कृष्ण, ये ऊंचा स्तर आने लग गया अभी, ये सातवां स्तर है जीवन मुक्त का, वो केवल भगवान की ही सेवा करने की इच्छा रखता है। और आठवां है सत्य संकल्प, हम चाहते कि ये पहला हो जाए, सत्य संकल्प है कि क्या जो भी इच्छा वो करेगा वो इच्छा तुरंत पूरा हो जाता है। अगर देखो भगवान ने ये स्तर हमें पहला दे दिया तो क्या होगा, जो मांगना नहीं चाहिए वो मांगने लगेंगे हम लोग, जो नहीं मांगना चाहिए मांगेंगे, क्यों? भगवान ये स्तर उसको देते हैं सत्य संकल्प, क्योंकि बाकी के जो स्तर है उसमें वो अधिकारी बन गया है, इसलिए जो भी इच्छा करेगा वो कौन सा इच्छा करेगा, केवल कृष्ण की इच्छा करेगा, केवल कृष्ण की इच्छा करेगा, और इसलिए वो स्तर को भी प्राप्त कर लेता है। और ये है भगवान का धाम में होता है सत्य संकल्प, जैसे भी इच्छा किया और वो कृष्ण की सेवा के लिए होगी, इसलिए भगवान उसको सब कुछ देते, इसलिए किसी ने कहा हम जानते हैं गोलोक जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी भक्त लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिटेड फैसिलिटीज है कृष्ण की सेवा करने के लिए। हम चाहते हैं कि हम सोने का मंदिर बनाए, बन सकता है अगर हम गोलोक में होंगे तो। जैसे आपने इच्छा किया मुझे सोने का मंदिर बनाना है तो सोना आ गया इधर। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वे भक्त लोग उनसे कहते थे सरस्वती ठाकुर अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ है। अरे वाई यू वरी अबाउट मनी, मनी के लिए क्यों आप चिंता करते हो, वन ब्रेक फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सफिशियंट। वो बोले कि गोलोक का एक ईट एक प्रचुर है, वो आ गया तो बस हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। अरे डोंट वरी अबाउट मनी। तो आप जी कहा करते थे मनी इज देयर इन द एयर, यू शुड नो ओनली टू ग्रैब। आपको अपने हाथ चलाने के लिए आना चाहिए वो इकट्ठा करने के लिए, उसमें भी आलसी है। हवा में पैसा है उसको केवल इकट्ठा करना है, भला ये समय नहीं करने के लिए। वही है कृष्ण की सेवा इतनी आसान है। और ये सब जो है आठ जो प्रक्रिया जीवन मुक्त का लक्षण, ये भागवत के पंचम स्कंध में प्रभुपाद जी लिखते हैं और ये सबके लिए संभव है। परंतु कहाँ से प्रारंभ करना होगा, अंत से नहीं, प्रारंभ से। प्रारंभ कौन सा है कि पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। तो धीरे धीरे अगला स्तर आएगा, तीसरा स्तर आएगा, चौथा स्तर आएगा, पांचवा स्तर आएगा, छठा स्तर आएगा। और स्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साधना सेवा और स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करने से। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
वातावरण बदल के बदलता नहीं, कॉन्शियसनेस बदलना चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि डिवोटी वातावरण बदलना चाहते हैं ताकि कॉन्शियसनेस भी बदले।
यहाँ मंदिर में आना एक केवल भौतिक वातावरण नहीं है, मैं हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। लोग अपने भौतिक वातावरण को बदल के सुखी बनना चाहते हैं। भक्तों के लिए बहुत ही जरूरी है कि आध्यात्मिक वातावरण आने के लिए प्रयास करें। लोग सुखी कैसे बनते हैं, उनको लगता है कि चलो अगर मैं अमेरिका चला जाऊं तो सुखी बनूंगा, लंदन चला जाऊं तो सुखी बनूंगा। कितने लोग खास करके यूरोप में लूटे जाते हैं भारतीय लोग, बहुत सारे बर्गलर है उधर। शाम का समय हो गया, जैसे हमारे एक डिवोटी माता जी वो डॉक्टर है, वो किसी अपने बस से नीचे उतरी और जा रही थी और चार ये बड़े बड़े ब्लैक लोग आ गए और उनको लगा उनका बीट बैग में कोई पैसा है, उसको छीनने लगे वो उसके हाथ से। तो सौभाग्यवश वहां से कोई पुलिस का बयान आ रहा था, वो देख के वो भाग गए। ये तो अगर आप रेजिस्ट करोगे तो फिर वो उधर तो बंदूक तो आसानी से मिल जाती है। इसलिए जहां पैसा ज्यादा है उतना ज्यादा दुख भी है। तो इसलिए केवल भौतिक वातावरण को बदलना सोच रहा है कि ये भौतिक वातावरण मेरी सुखी बनाएगा, ये गलत है। तो यहां हम आध्यात्मिक वातावरण की बात कर रहे हैं। डिवोटीज को यही सोचना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे वातावरण में आऊं जो आध्यात्मिक सेवा करने के लिए अनुकूल है। सो दैट इज अ डिफरेंस। भौतिक वातावरण बदल से भौतिक सुख नहीं मिलेगा। हर एक वातावरण का उसका एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जो अमेरिका और यूरोप में है भौतिक जो फिजिकल सुख जो उन्होंने बना के रखा है, ऐसा बना के रखा है अगर कोई बीमार पड़ गया है और आपने फोन किया, अगर वहां गाड़ी नहीं जाती हो हेलीकॉप्टर आ जाती है 2 मिनट के अंदर, तो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते। दे क्रिएटेड फिजिकल हेवन बट मेंटली हेल, मानसिक दृष्टि से नरक है। 80-70 साल के बूढ़े वो क्या कर रहे हैं, अकेले बैठी हम हम सियाटल में थे, वहाँ एक डिवोटी के घर के ऊपर एक घर था, वहाँ एक बूढ़ी औरत निवास कर रही थी। उसका पूरा दिन कैसे जाता है? स्मोकिंग, टेलीविजन देखना, बस। कोई नहीं उसके साथ, उसके परिवार के कोई नहीं, और ऐसे अनलिमिटेड फैमिलीज है जो अकेला रहते हैं। तो इसलिए कई लोग कहते हैं लंदन में इतने सारे स्ट्रीट में वातावरण ऐसा तमोगुण का है, आप भक्तों को वहां के लोगों को पूछ सकते हो, इट्स ऑल घोस्टली हॉन्टेड। कितने आसक्त अकेले है, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, ये कैसे छोड़ सकता हूं, इसको कैसे ले जाऊं, इसको कैसे ले जाऊं, ऐसी भावना से जब शरीर छोड़ते हैं वापस आ जाते हैं उधर। परंतु मनुष्य शरीर में नहीं, भूत के शरीर में, और जो भी उधर आएगा उसको हॉन्ट करते रहते, स्ट्रीट्स आफ्टर स्ट्रीट्स ऐसे। तो इसलिए वातावरण, भौतिक वातावरण बदले के सुखी नहीं बनेंगे। अगर आध्यात्मिक कार्य चल रहा हो, जैसे देवामृत स्वामी कहते हैं, जहां आपको लग्जरियस एसोसिएशन है, फीस मिल रहा है आपका भक्तों का संघ का, उसको छोड़कर 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा के लिए क्यों जाना? फिर एक्स्ट्रा बचता भी नहीं। जिंदगी भर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तलक मार्ग पर लग जाते हैं, इसलिए भौतिक वातावरण को बदलने की बात चल रही है, उसको नहीं बदलना चाहिए। जैसे अर्जुन जंगल में जाना चाहते थे, सोच रहे थे कि जंगल अनुकूल है मेरे लिए, कृष्ण उनकी भर्त्सना करते थे, वो तो जंगल में जाएगा भीख मांगकर खाएगा, लेकिन तू क्षत्रिय है, यहाँ तो गुस्सा नहीं कर रहा है जिनके प्रति गुस्सा करना चाहिए, और जो जंगल में जाएगा भीख मांगने के लिए, गृहस्थ लोग स्वाभाविक है, काफी लोग डांट के ही देते हैं, देने वाला भी कभी डांट के ही देता है, और अगर कोई देगा नहीं डांटेगा, भिखारी कहेगा जा काम कर कुछ, तो क्षत्रिय होने के कारण क्या होगा, तो क्रोधित हो जाएगा और तब अपना तलवार उठाएगा। जहां तलवार नहीं उठाना चाहिए तलवार उठाकर पाप करेगा, और जहां तलवार उठाना चाहिए उधर नहीं उठाकर पाप करेगा, तो तेरा जीवन पाप नहीं है। इधर से छोड़कर जाना पाप है और उधर जाना पाप है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तब तो अर्जुन समझ गए, हाँ भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, कि मेरा कर्तव्य है तलवार उठाना ही मेरे लिए, इसे मैं बच नहीं सकता, तो क्यों नहीं कृष्ण के लिए तलवार उठाऊं। वो उधर वातावरण को बदल नहीं सके, केवल भगवान ने उनके अंदर का जो वातावरण है उसको बदल दिया, दैट इज वो भगवदगीता भागवत है, दृष्टिकोण को बदलना। इसलिए एक जर्मन फिलोसफर ने जब भगवदगीता पढ़ा, उन्होंने कहा व्हाट अ बुक, इट टेल्स यू टू चेंज फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड, आपको अंदर से बदलने के लिए कहता है, और जब अंदर से बदल गए तो बाहर का बदला या न बदला उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक डिफरेंस। इसलिए भेंट है, सबसे बड़ा भेंट है भागवत का, अपने दृष्टिकोण को बदल देना, आपके कॉन्सेप्ट को बदल देना, आपके कॉन्शियसनेस को बदल देना। इसलिए कृष्ण भावनामृत है, अभी आई कॉन्शियसनेस है, सब कुछ आई के दृष्टिकोण से देखना, आई यानी कि स्मॉल माइंडेडनेस, और उस नैरो माइंडेडनेस, क्षुल्लक दृष्टिकोण से देखने से सब कुछ हमारे विरुद्ध लगता है, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट मी। कलयुग में एक सबसे बड़ा कंप्लेंट लोगों का क्या होता है कि सब मेरे विरुद्ध है, जितने की जैसे कि तुम बहुत सिग्निफिकेंट हो, लोग कहते मेरे प्रति लोग इतना द्वेष करते हैं, द्वेष करने के लिए पास तुम्हारे पास है ही क्या, व्हाट यू हैव सो दैट पीपल कैन बी एनवियस ऑफ यू, आपके पास कुछ भी न है फिर भी आप अपने आप को सिग्निफिकेंट मानते हो। लेकिन जैसे कृष्ण को स्वामी बन लिए लो तो क्या होगा, आप जान जाओगे कि मैं तो नॉन एंटिटी हूं, मैं तो इनसिग्निफिकेंट हूं, लोग क्यों मेरे प्रति कुछ करेंगे। इसलिए ये भागवतम और भगवत गीता का भेंट, कोई मटीरियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये बीमारी है तो ये बाबा के पास जाओ, ये आज देगा, फिर लगा आपके पेट पे तो ठीक हो जाएगा, ये कितना मूर्खता है। वो बाबा भी मूर्ख और उससे वो पाउडर लेने वाला भी मूर्ख। ये शरीर ही कैंसर है, ये आत्मा का कैंसर क्या शरीर है, शरीर में इतना बड़ा एक गांठ आ गया उसको हम कैंसर कहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं आत्मा का कैंसर है कि क्या, अनवांटेड ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ, इतना बड़ा ग्रोथ है, कैंसर है, इतना बड़ा ये कैंसर है, और कहते कि मेरा शरीर गोरा सा हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, यानी कि इस कैंसर को उपमा दे रहे, और इसको डेकोरेशन के लिए इतना इंडस्ट्री खड़ा हो गया है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, वो इतने होशियार है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लोग, अलग अलग देश में स्पॉन्सरशिप करते हैं और वहां के किसी स्त्री को विश्व सुंदरी बना देते हैं, फिक्स रहता पहले से, क्यों, उधर मार्केट बड़ा हो गया, तो जैसे ही उसको विश्व सुंदरी बना गया तो बाकी सब लगता कि मैं भी बनूंगी, कैसे बनूंगी, ये कॉस्मेटिक खरीदी करो, वो कॉस्मेटिक खरीदी करो। जब हम लोगों के बाथरूम में कभी कभी जाना पड़ता है, हम कहते रहे बाप रे इसमें कम से कम 200 ईट हम मंदिर के लिए खरीदी कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ इसको सबको ले लो और भेज दो, मोरका बाजार होता ना, उधर से कुछ हजार चीज वो रखते। देखो किसके लिए चाहिए, अगर सत्वगुण में जीवन जगाओ, जीत रहोगे, अंदर से साफ हो गया तो शरीर कभी दुर्बल नहीं होता, एक कॉमन सेंस लॉजिक है। अगर आप सत्वगुण का पदार्थ खाया तो अपने आप शरीर को तेज आ जाता है, दुर्गंध चला जाता है, किसी अंग से आपका दुर्गंध नहीं निकलता। एक रजो और तमोगुण का खाना खाओ, रजोगुण के विचार करो, तो फिर शरीर को बाहर से ये सब लेप लगाना पड़ता है, ऑयल पेंट लगाओ, नेल पेंट लगाओ, यू डोंट रिक्वायर ऑल दिस स्टफ, कोई कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने नेचुरली नेल पेंट लगाया, एक कलर कॉम्बिनेशन बना के भेजा, उसके ऊपर जो भगवान ने चूज किया हुआ है उसके ऊपर लगाना है, ये प्रतिकार करने के समान है, आवश्यकता नहीं। हाँ, सत्वगुण में जिएंगे, जैसे हमने देखा है सन्यासियों का जीवन सत्वगुण में होने के कारण, मैंने स्वयं अनुभव किया है, उनके कपड़े में से स्नान जब रात को सोकर उठते हैं और उनका कपड़ा काफी हमने साफ किया हुआ है तो उसमें कुछ दुर्गंध नहीं रहता, वो गंदगी ज्यादा नहीं पकड़ता, दुर्गंध तो रहता ही नहीं कभी। रघुपति प्रभु ये पूछ सकते हो, क्यों, क्योंकि सत्वगुण के विचार है, सत्वगुण का आचार है, यू डोंट रिक्वायर बाहर से, कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सब कुछ कैसे शरीर को सुंदर बनाना, एक मैंने पढ़ा, एक ब्रिटेन की रानी थी, वो केवल एक विशेष प्रकार का पानी उधर मिलता था, वो बहुत सुंदर थी, बोलते कि केवल पानी का भी उपयोग किया, कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं किया। और एक दूसरी यूरोप की रानी थी, कोई फ्रेंच की रानी है, उसने जिंदगी में दो ही बार स्नान किया, ये तो और गंदा है, ब्लेच है, स्नान तो कर रहा थे सबको, दो ही बार, जब भी उसका जन्म हुआ था तब उनके पेरेंट्स ने उसको स्नान किया, और दूसरी बार जब उसका शादी हुआ तभी उसने स्नान किया, उसके अलावा कभी स्नान नहीं किया। देखो एक और एक लेवल का अनक्लीननेस है, दूसरा है कि अपने शरीर को सजाते रहो, और दूसरा है कि इतना मल को जो गंदगी है उसको पसंद करते रहो, ये दोनों का विरोधाभास कितना है। तो भारतीय संस्कृति क्या है, अंदर से डेकोरेट करो इसको, इसलिए महापुरुष ने कहा वैष्णव सदाचार ये असली ऑर्नामेंट है, ये असली आभूषण है, सनातन गोस्वामी को कहा था। जब अंदर से जब साफ बन जाएंगे, सत्वगुण का प्रभाव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, एक गारंटी है हम क्लीन बन जाते। फिर अलग अलग ये करने की आवश्यकता नहीं, भौतिक जगत में कि सब कुछ एक्सटर्नल दृष्टि से देखना, आध्यात्मिक जगत में कि सब कुछ अंदर के दृष्टिकोण से देखना, तो हमेशा संघर्ष चालू रहेगा, इसमें कोई ये संघर्ष बंद नहीं होगा, कंटिन्यू संघर्ष चालू रहेगा, क्योंकि दृष्टिकोण ही अलग है, एक को दृष्टि नहीं है, धृतराष्ट्र के सब पुत्र है और दूसरे पांडवों के अनुयायी है, जो सब कुछ अलग दृष्टिकोण से देखने की इच्छा रखते, तो ये संघर्ष चालू रहेगा। इसलिए अगर उनके वचनों को सुनकर, उनके दृष्टिकोण, लोग जानते हैं कि बाल को काला लगाकर करना वो कैंसर कर देता है, क्योंकि कैंसरस एलिमेंट्स होते हैं उसको लगाने से, कितने सारे जानवरों को मारते हैं उससे। तो डिवोटीज को तो कम से कम भक्ति सामृत्य रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ ऑल ऑर्डिनरी थिंग्स ऑल्सो। ये हमें देखना चाहिए, ये भक्तों का नेचुरल क्वालिटी है कि कहाँ से आया, कैसे आया, केवल मेरे शरीर को सजा रहे, लेकिन इसका सोर्स क्या है, कितने जानवरों को ये मारा हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, मेडिसिन लेना है वो जरूरी है अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, लेकिन शरीर को सजाने के लिए जो आवश्यकता नहीं है उसके लिए इतने जीव जंतुओं की हत्या होती है, इतना एक्सप्लाइटेशन होता है, उसमें हमें क्यों भाग लेना है। ये कॉमन सेंस लॉजिक है, इसमें हमें भाग नहीं लेना चाहिए, उस पाप से मुक्त रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वो नाम अपराध हो जाता है। नहीं, मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, सेवा कर रहा हूँ महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है नहीं, कैसे पाप से बच रहे भी महत्वपूर्ण है। सेवा कर रहे ठीक है, जैसे कभी कभी लोग कहते अरे मैं कम से कम प्रचार किया, प्रचार करते थे मैं गिर गया, वो ठीक है लेकिन प्रचार तो किया ना। नहीं, प्रचार भी करना है और गिरना भी नहीं। तो ये भागवत का दृष्टिकोण है, ये गीता का दृष्टिकोण है। इसलिए कभी प्रभुपाद जी को किसने, उनके शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी आप कभी जेल में गए थे, प्रभुपाद जी नहीं देखो रास्कल देखो, अपने गुरु को पूछा तो कभी जेल में गया था, वो लिखना पड़ता था पासपोर्ट में, पासपोर्ट के कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉपर है तो हैव यू एवर बीन टू हैव बीन एडमिटेड टू क्रिमिनल चार्जेस, इज आस्किंग स्पिरिचुअल मास्टर। प्रॉपर जी ने कहा मायापुर में जब जो कम्युनिस्ट लोगों ने क्या किया, वो सोचते थे कि किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर जी को पकड़ा जाए। जब वहां भक्तों ने गोली चलाया था, क्योंकि 300 लोग आए थे अटैक करने के लिए, डीटीस को उठाकर ले जा रहे थे, तभी उनके पास उन्होंने लाइसेंस्ड गन्स रखा था, तो भवानंद प्रभु ने गोली चलाया बड़े धैर्य के साथ, वो छोड़ो जनानी अक्सर ने भी चलाया था कृष्ण के लिए लाइसेंस हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, गलत इल्जाम लगाकर भक्तों को बेड़ी लगाकर ले जा रहे थे, और उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, और उनको बाद में समझा कि एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर दैट ओल्ड मैन, वेरी दैट ओल्ड मैन। प्रभुपाद जी ने कहा अगर वो मुझे ले जाते आई वुड हैव नॉट टेकन, मैं उसको सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि जो जिंदगी में कभी पाप नहीं किया है, जो सूप चिकन सूप जो छोटे बालक थे सब उनके माता जबरदस्ती लेना चाहती थी उनको बचाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसको उल्टी किया। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे जीवन में कभी पाप हुआ ही नहीं, तो उनको ये प्रश्न करना आप कभी जेल में गए थे क्या, ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। तो कहने का उद्देश्य है कि भक्त को देखना चाहिए कि कितना पाप है, उससे बचने के लिए प्रयास करना, क्योंकि पाप का बोझा आ गया तो जपा में वो थोड़ा कठिनाई आ जाती। इसलिए ये सारे स्तरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करना चाहिए, फिर हम लोग जीवन मुक्त हो जाते। इसलिए प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा आपके डिवोटीज का क्या है, बोला सब एवरीवन इज लिबरेटेड, ऑल माय डिवोटीज आर लिबरेटेड, ओनली थिंग आप टू रियलाइज नाउ, वो केवल उनको उसका जानकारी होनी चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, राधा गोविंद धाम प्रोजेक्ट की।